My dear young women,
मेरी प्रिय जवान महिलाएं, कितना बढ़िया दृश्य है कि तुम इस महान सभा भवन में हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी माताएं और शिक्षक हैं। इस सम्मेलन केंद्र के बाहर कई सौ और हजार और दुनिया भर में इकट्ठा हुए हैं। वो हमसे भी इससे ज्यादा भाषाओं में सुनेंगे। हमारे भाषण का अनुवाद उनकी अपनी भाषाओं में होगा। तुमसे बात करने का मौका एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर यह एक बढ़िया मौका भी है। जो मैं कहूँगा उसके लिए मैं पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अन्य ने उचित रूप से इस सभा के उद्देश्य पर भाषण दिया है। मैं सिर्फ वर्णन करता हूँ। यह ईश्वर का प्रकट किया शब्द है जो धर्म सिद्धांत और वादा के 121वें भाग में पाया जाता है। नैतिक गुण तुम्हारे विचारों को निरंतर सजाएं, फिर तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा ईश्वर की उपस्थिति में, और पुरोहिती की धर्म सिद्धांत तुम्हारी आत्मा को भरेगा जैसे स्वर्ग से आए ओस। पवित्र आत्मा तुम्हारा लगातार साथी होगी, और तुम्हारी छड़ी ने बदलने वाली छड़ी धार्मिकता और सच्चाई की, और तुम्हारा राज सदा रहने वाले राज्य, और बिना जोर के तुम्हारे राज्य आएंगे तुम्हारे लिए हमेशा और हमेशा के लिए। ईश्वर के वचन के इन उल्लेखनीय शब्द की तुलना में क्या महान वादा हो सकता है? ये ईश्वर के शब्द हैं भविष्यवक्ता जोसेफ को प्रकट किए गए। ये शब्द अपने साथ रखते हैं एक शानदार वादा सभी लिए जो विचारों को निरंतर सजाते रहेंगे। तुम जवान औरतें भी अपने जीवन की शुरुआत में हो। तुम पर्याप्त उम्र की हो बैप्टिज्म के लिए। तुम इतनी जवान हो कि इस भविष्य दुनिया की तुम सपना देखती हो अभी तुम्हारे सामने है। तुम प्रत्येक ईश्वर की संतान हो। तुम प्रत्येक ईश्वर प्राणी हो। तुम वास्तव में ईश्वर की पुत्री हो। तुम्हारी संभावना की कोई सीमा नहीं। अगर तुम अपने जीवनों पर नियंत्रण रखोगी, भविष्य मौके और खुशियों से भरे हैं। तुम अपनी योग्यताओं के अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकती। महान मौके आएंगे तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल तरीका देता हूँ जिसका अगर पालन किया जाएगा वो तुम्हारी खुशियों का आश्वासन देगा। यह एक साधारण चार विषय कार्यक्रम है। यह इस तरह है: एक, प्रार्थना; दो, अध्ययन; तीन, अपनी टाइडिंग देना; और चार, अपनी सभाओं में भाग लेना। पहले विषय के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रार्थना। तुम हमारे स्वर्गीय पिता की बेटी हो। वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। उनसे बात कीजिए। प्रत्येक रात और सुबह अपने घुटनों पर हो जाइए और अपने दिल का आभार उनसे प्रकट कीजिए। उन आशीर्वादों पर कहिए जिसकी तुम्हारी इच्छा और जरूरत है। कभी मत भूलना कि गिरजाघर की शुरुआत एक लड़के जोसेफ स्मिथ की विनम्र प्रार्थना से हुई थी, उसके पिता के खेत के वृक्षन के पास। उस उल्लेखनीय अनुभव से, जिसे हम प्रार्थना दिव्य दृष्टि कहते हैं, ये कार्य बड़ा जब आज 160 देशों में स्थापित है 12 करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ। यह डैनियल की दिव्य दृष्टि की पूर्ति है कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर पूरी पृथ्वी को भर दिया। ना ही तुम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना अर्पित कर सकती हो, पर परिवार प्रार्थना के लिए अपने माता पिताओं को प्रोत्साहित कर सकती हो। प्रार्थना वो तरीका है जिसे हम अपने स्वर्ग के पिता तक पहुंचते हैं। उसे कुछ खर्च नहीं होता, उसके लिए जरूरी है विश्वास और कोशिश। घुटनों पर होकर विनम्र प्रार्थना करने से बढ़कर इनाम कुछ नहीं है। उसे ईश्वर के लिए प्यार प्रदर्शित होता है, वो सभी अच्छी चीजें देने वाले हैं। प्रार्थना खुद के लिए आदर प्रदर्शित करता है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं। वह एक व्यक्तिगत संचारण है ईश्वर के साथ। मेरी सूची में दूसरा विषय है अध्ययन। इस साधारण शब्द में क्या सम्मिलित है? प्रथम है धर्मशास्त्रों का अध्ययन। तुम शायद पुराने नियम को थोड़े भाग पढ़ोगी, पर उसमें महान सबक है। नए नियम में कई महान सबक हैं। उसमें चार सुसमाचार सम्मिलित हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स और अन्य लेख। कोशिश कीजिए सिर्फ एक सुसमाचार पढ़ने की, शायद जॉन की पुस्तक। जब तुम वो समाप्त कर लोगी, मॉर्मन की पुस्तक उठाइए। 2 वर्ष पहले मैं पूरे गिरजाघर से चुनौती की थी कि वो मॉर्मन की पुस्तक पढ़ें उस वर्ष की समाप्ति से पहले। यह आश्चर्य है कि कितने लोगों ने चुनौती को पूर्ति की। जिन सभी ने उसको उसकी कोशिश के लिए आशीर्वाद मिला। जब वो पूरी तरह सम्मिलित हो जाते हैं, ये हमारे मुक्तिदाता की गवाही के अतिरिक्त उनके दिल प्रकाशित हुए और उनकी आत्माएं प्रभावित हुईं। तुम में से कुछ बहुत छोटी थी तब पढ़ने के लिए, पर तुम अभी पढ़ना शुरू करने के लिए बहुत छोटी नहीं हो। धार्मिक अध्ययन के अतिरिक्त वहाँ शिक्षा की चुनौती है। अभी संकल्प कीजिए जब तुम जवान हो कि तुम सभी शिक्षा प्राप्त करोगी जो तुम हासिल कर सकती हो। हम बहुत मुकाबले वाले समय में हैं और वो सिर्फ और भी मुकाबला भरा होगा। शिक्षा वो चाबी है जो मौके के दरवाजे को खोलेगी। तुम शायद विवाह पर योजना बनाओगी और उसके लिए आशा करोगी, पर तुम निश्चिंत नहीं कि वो होगा। और यद्यपि तुम शादी करोगी, शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत लाभ रहेगी। तुम रास्ते से दूर मत जाओ ताकि दिन आएंगे और जाएंगे तुम्हारे जीवनों में बिन सुधार के। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे जब तुम कोशिश करोगी। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और तुम्हारा दृष्टिकोण में वृद्धि होगी जब तुम्हारे दिमाग ने अनुभवों से ज्ञान के लिए खुलेंगे। अगला विषय है टाइदिंग भरना। शानदार है ईश्वर का वादा जो उनसे संबंधित है जो अपने टाइड्स देते हैं। वो आधुनिक ईश्वरीय वचन में कहते हैं कि वो नहीं जलेंगे। उनका महान वादा मैलकाई के शब्दों में पाया जाता है। उन्होंने कहा, क्या इंसान ईश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुमने मुझे लूटा, पर तुम कहते हो कहां मैंने तुम्हें लूटा? टाइज और भेंटों में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का ईश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरोखें तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और फिर वो कुछ बहुत रुचिकार कहते हैं, इसे सुनिए। मैंने तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के ईश्वर का यही वचन है। तब सारी जटाएं तुम्हारे धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। जबकि टाइदिंग पैसे के साथ दी जाती है, सबसे आवश्यक है उसे विश्वास के साथ भरा जाए। मैंने कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे एक वास्तविक टाइट दिया और उससे शिकायत की। बल्कि उसने ईश्वर पर अपना विश्वास रखा और ईश्वर उसे असफल नहीं किया। जब मैं एक छोटा लड़का था, प्रत्येक दिसंबर मेरे पिता हमें रास्ते के पास पार बिशप डंकन के घर ले जाते थे टाइडिंग समझौता के लिए। उनके पास वार्ड इमारत में कोई दफ्तर नहीं था और इसलिए उसे अपने घर पर ऐसा करना पड़ता था। हम सभी उसकी बैठक में बैठते थे और एक के बाद वो हमें डाइनिंग कमरे में आमंत्रित करते थे। हमारी टाइडिंग शायद 25 सेंट थी या 50 सेंट, पर वो पूरी टाइडिंग थी। वो एक रसीद लिखते और वार्ड अभिलेख में रकम अभिलिखित करते थे। रकम इतनी कम होती थी कि टाइडिंग का अभिलिखित करना टाइडिंग देने का रकम से ज्यादा था, पर उससे एक आदत स्थापित हुई कि लगातार इन सभी वर्षों तक चलती रही। टाइडिंग देने से कई आशीर्वाद मिले, जैसे ईश्वर ने वादा किया था। मेरे विवाह डिप्रेशन के समय हुआ था, जब पैसे अपर्याप्त थे, पर हमने अपनी टाइडिंग दी और किसी तरह भूखे नहीं या किसी जरूरी चीज की कमी नहीं थी। चौथा विषय, अपनी सभाओं में भाग लीजिए। ईश्वर के बोझ के प्रभु बोझ लेने की जगह कोई और नहीं ले सकता। यह एक शानदार पवित्र और बढ़िया कार्य है कि ब्रेड और पानी लिया जाए सके। मानव के उदारकर्ता के शरीर और रक्त की याद में हमारे ईश्वरीय मुक्तिदाता के परिश्चित त्याग की महत्व की तरह मानव इतिहास में कोई और घटना नहीं है। कुछ और उसके साथ तुलना नहीं कर सकती। उसके बिना जीवन अर्थहीन होगा, वो बिना उद्देश्य की यात्रा होगी। मौत अंत नहीं है, पर एक और भी शानदार अस्तित्व में जाना है। इन सभी का संकेत प्रभु बोझ लेने में है। हमारी सभाओं में बड़ी सभी वस्तुएं कम महत्व रखती हैं हमारे ईश्वर के त्याग के सूचक चिन्ह की तुलना में। अगर तुम इन चार चीजों को करोगी, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा जीवन लाभप्रद होगा, तुम्हारी खुशियां महान रहेंगी, तुम्हारी पूर्तियां सभी तरह से बढ़िया और संतोषप्रद होंगी। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, मेरी प्रिय जवान बहनों। उनके आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हर समय और सभी स्थिति में हो, और स्वर्ग तुम्हें देखकर मुस्कुराए। मैं विनम्र से प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।